जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सद ग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ, ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अंगनाओं के शरीर आदि भोग और जगत के पदार्थों में कुछ सुख नहीं। ज्ञानवानों को ये पदार्थ तुच्छ भासते हैं, वे इसमें आस्था नहीं करते तो फिर पदार्थ की इच्छा कैसे करें। इन भोग ऐश्वर्य पदार्थों से मूढ़ असाधु संतोष पाते हैं, पर जो ज्ञानवान साधु है वे इनमें प्रीति नहीं करते। जो कृपण अज्ञानी है उनको भोग ही सरस है, पर भोग आदि अंत मध्य सब में दुख रूप है। जो पुरुष इनमें आस्था करते हैं वे गर्धब और नीच पशु है। हे रामचंद्र जी, स्त्री रक्त मांस और अस्थि आदि से पूर्ण है, जो इनको पाकर संतुष्ट होते हैं वे सियार है, मनुष्य नहीं। जो ज्ञानवान है वे जगत के पदार्थों में प्रीति नहीं करते। पृथ्वी सर्व मृत्तिका, वृक्ष काष्ठ, देह मांस और पर्वत पाषाण रूप है, पाताल अध है और आकाश ऊर्ध्व है, सो दिशाओं से व्यापा है। सर्व विश्व पंचभौतिक रूप है, इसमें तो अपूर्व सुख कोई नहीं जिसमें ज्ञानवान प्रीति करे। इंद्रियों के पंच विषय मोक्ष को हरने वाले और विवेक मार्ग के रोकने वाले हैं, और जो कुछ जगत जाल की संपूर्ण विभूति है वह सब दुख रूप है। प्रथम इनका प्रकाश भासता है पर पीछे कलंक को प्राप्त करते हैं। जैसे दीपक प्रथम प्रकाश को दिखाता है और फिर काजल कलंक को देता है, तैसे ही इंद्रियों के विषय आगम पाई है, इनसे शांति नहीं होती। अज्ञानी को स्त्री आदि पदार्थ रमणीय भासते हैं, पर ज्ञानवान की वृत्ति इनकी ओर नहीं फुरती। अज्ञानी को ये स्थिर रूप भासते हैं, स्वाद देते हैं और तुष्ट करते हैं, परंतु ज्ञानवान को असत्य और चल रूप भासते हैं और तुष्टता के कारण नहीं होते हैं। ये विषय भोग है, विष की नाई है और स्मरण मात्र से भी विश्वत मूर्छा करते हैं और सत्य विचार भूल जाता है। इससे तुम इनको त्याग करके अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ और ज्ञानवानों की नाई विचरो। श्री योग वशिष्ठ महारामायण पंचम उपशम प्रकरण प्रारंभ। वाल्मीकि जी बोले, हे साधो, अब स्थिति प्रकरण के अनंतर उपशम प्रकरण कहता हूं, जिसके जानने से निर्वाणता पाओगे। जब वशिष्ठ जी ने इस प्रकार वचन कहे तब सब सभा ऐसे शोभित हुई जैसे शरद काल के आकाश में तारांगण शोभते हैं। वशिष्ठ जी के वचन परमानंद के कारण है। ऐसे पावन वचन सुनके सब मौन हो गए, और जैसे कमल की पंक्ति कमल की खानी में स्थित हो तैसे ही सभा के लोग और राजा स्थित हुए। स्त्रियां जो झरोखों में बैठी थी उनके महाविलास की चंचलता शांत हो गई, और घड़ियालों के शब्द जो ग्रह में होते थे वे भी शांत हो गए। शीश पर चमर करने वाले भी मूर्तिवत अचल हो गए, और राजा से आदि लेकर जो लोग थे वे कथा के सम्मुख हुए। राम जी बड़े विकास को प्राप्त हुए। जैसे प्रातः काल में कमल विकासमान होता है और वशिष्ठ जी की कही वाणी से राजा दशरथ ऐसे प्रसन्न हुए जैसे मेघ की वर्षा से मोर प्रसन्न होता है। सबके चंचल वन रूपी मन विषय भोग से रहित हो स्थित हुए और मंत्री भी सुन के स्थित हो रहे और अपने स्वरूप को जानने लगे। जैसे चंद्रमा की कला प्रकाशती है तैसे ही आत्मकला प्रकाशित हुई और लक्ष्मण ने अपने लक्ष्य स्वरूप को देख के तीव्र बुद्धि से वशिष्ठ जी के उपदेश को जाना। शत्रुघ्न जो शत्रुओं को मारने वाले थे उनका चित्त अति आनंद से पूर्ण हुआ और जैसे पूर्णमासिका का चंद्रमा स्थित होता है तैसे ही मंत्रियों के हृदय में मित्रता हो गई और मन शीतल और हृदय प्रफुल्लित हुआ। जैसे सूर्य के उदय हुए कमल तत्काल विकासमान होता है और जो मुनि राजा और ब्राह्मण स्थित थे उनके रत्न रूपी चित्त स्वच्छ और निर्मल हो गए। जब मध्यान्ह काल का समय हुआ और बाजे बजकर उनके ऐसे शब्द हुए जैसे प्रलय काल में मेघों के शब्द होते हैं और उन बड़े शब्दों से मुनीश्वरों का शब्द आच्छादित हो गया। जैसे मेघ के शब्द से कोकिला का शब्द दब जाता है तब वशिष्ठ जी चुप हो गए और एक मुहूर्त पर्यंत शब्द होता रहा। जब घन शब्द शांत हुआ तब मुनीश्वर ने राम जी से कहा, हे रामचंद्र जी, जो कुछ आज मुझे कहना था वह मैं कह चुका, अब कल फिर कहूंगा। यह सुन सर्व सभा के लोग अपने अपने स्थानों को गए और वशिष्ठ जी ने राजा से लेकर राम जी आदि से कहा कि तुम भी अपने अपने घरों में जाओ। सबने चरण वंदना और नमस्कार किया और जो नभचारी वनचारी और जलचारी थे उन सबको विदा कर आप भी अपने अपने स्थानों को गए और ब्राह्मण की सुंदर वाणी को विचारते और अपने अपने अधिकार की क्रिया दिन को करते रहे। इतना कहकर फिर वाल्मीकि जी बोले कि हे भारद्वाज, इस प्रकार अपने अपने स्थानों में सब यथाउचित क्रिया करने लगे। वशिष्ठ जी, राजा, राघव, मुनि और ब्राह्मणों ने अपने अपने स्थानों में स्नान आदि क्रिया की और गौ, स्वर्ण, अन्न, पृथ्वी, वस्त्र, भोजन आदि ब्राह्मणों को यथा योग्य पात्र दान दिए। सुवर्ण और रत्नों से जड़े स्थानों में आकर राजा ने देवताओं का पूजन किया और कोई विष्णु का और सदाशिव का, कोई अग्नि का और किसी ने सूर्य आदि का पूजन किया। तदनंतर पुत्र, पौत्र, सृहद, मित्र, बांधव संयुक्त नाना प्रकार के उचित भोजन किए। इतने में दिन का तीसरा पहर आया, तब सबने अपने संबंधियों संयुक्त और क्रिया की और जब सांझ हुई और सूर्य अस्त हुआ तब सायंकाल की विधि की और अघमर्षण गायत्री आदि का जाप किया और पाठ, स्तोत्र और मनोहर कथा मुनीश्वरों ने कही। फिर रात्रि हुई तब स्त्रियों ने शैया बिछाई और उन पर वे विराजे, पर राम जी बिना सबको रात्रि एक मुहूर्तवत व्यतीत हो गई। राम जी स्थित होकर वशिष्ठ जी के वचनों को, पंक्तियों को विचारने लगे कि जिसका नाम संसार है उसमें भ्रमने का पात्र कौन है, नाना प्रकार के भूत जात कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, मन का स्वरूप क्या है, शांति कैसे होती है, यह माया कहां से उठी है और कैसे निवृत्त होती है, निवृत्त हुए विशेषता क्या होती है, नष्ट किसकी होती है, अनंत रूप जो विस्तृत आत्मा है उसमें अहंकार कैसे होता है, मन के क्षय होने और इंद्रियों के जीतने में मुनीश्वरों ने क्या कहा है और आत्मा के पाने में क्या युक्ति कही है। जीव, चित्त, मन और माया सब ही एक रूप है। विस्तार रूप संसार इसने ही रचा है और जैसे ग्राह ने हाथी को बांधा था और वह कष्ट पाता था, तैसे ही असत रूप संसार में बंध कर जो जीव कष्ट पाते हैं उस दुख के नाश करने के निमित्त कौन औषध है। भोग रूपी मेघमाला में मोहित हुई मेरी बुद्धि मलिन हो गई है, इसको मैं किस प्रकार शुद्ध करूं। यह तो भोग के साथ तन्मय हो गई है और मुझको भोगों के त्यागने की सामर्थ्यता भी नहीं। भोगों के त्याग के बिना बड़ी आपदा है और उनके संहारने की भी सामर्थ्य नहीं। बड़ा आश्चर्य है और हमको बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ है। आत्मपद की प्राप्ति मन के जीतने से होती है और वेदांत शास्त्र के कहने का प्रयोजन भी यही है। गुरु के वचनों से भ्रम नष्ट हो जाता है, जैसे बालक को परछाई में वेताल भासता है, उस भ्रम को जैसे बुद्धिमान दूर करता है, तैसे ही मन रूपी भ्रम को गुरु दूर करते हैं। वह कौन समय होगा कि मैं शांति पाऊंगा और संसार भ्रम नष्ट हो जाएगा। जैसे यौवनवान स्त्री प्रिय पति को पाके सुख से विश्राम करती है, तैसे ही मेरी बुद्धि आत्मा को पाके कब विश्रांतिमान होगी। नाना प्रकार के संसार के आरंभ मेरे कब शांत होंगे और कब मैं आदि अंत से रहित पद में विश्रांतिवान होऊंगा। मेरा मन कब पावन होगा और पूर्णमासिका के चंद्रमावत संपूर्ण कला से संपन्न होकर स्वच्छ, शीतल और प्रकाश रूप पद में कब स्थित होऊंगा। मैं कब जगत को देख के हंसूंगा और कब मलिन कलना को त्याग के आत्मपद में स्थित होऊंगा। कब मैं मन को संकल्प विकल्प से रहित शांत रूप देखूंगा, जैसे तरंग से रहित नदी शांत रूप दिखती है। तृष्णारूपी तरंग से व्याकुल जो संसार समुद्र है वह माया जाल से पूर्ण है और राग द्वेष रूपी मच्छों से संयुक्त है। उसको त्याग के मैं विगत ज्वर कब होऊंगा, उस उपशम सिद्ध पद को मैं कब पाऊंगा जो बुद्धिमानों ने मूर्ता को त्याग के पाया है। मैं कब निर्दोष और समदर्शी होऊंगा और अज्ञान रूपी ताप मेरा कब नाश होगा जिससे संपूर्ण अंग मेरे तपते हैं। सब धातु क्षोभ रूप हो गई है और उनसे बड़ा दीर्घ ज्वर हुआ है, इससे कब मेरा चित्त शांतिवान होगा, जैसे वायु बिना दीपक स्थिर होता है। कब मैं भ्रम त्याग के प्रकाशवान होऊंगा और कब मैं लीला करके इंद्रियों के दुखों को तर जाऊंगा। दुर्गंध रूप देह से मैं कब न्यारा होऊंगा और अहम त्वम आदि मिथ्या भ्रम का नाश मैं कब देखूंगा। जिस पद के आगे इंद्र आदिकों का सुख, ऐश्वर्य, मंदार आदि वृक्षों के सुगंध और नाना प्रकार के भोग तृणवत भासते हैं, वह आत्म सुख हमको कब प्राप्त होगा। वीतराग मुनीश्वर ने जो हमसे ज्ञान की निर्मल दृष्टि कही है उसको पाके मन विश्रांतिवान होता है। संसार तो दुख रूप है, मन तो किस पदार्थ को पाके विश्रामवान हुआ है? माता पितर पुत्र आदि जो संबंधी है उनका पात्र मैं नहीं हूं, इनका पात्र भोगी होता है। बुद्धि तू मेरी बहन है, तू मेरा ही अर्थ भ्राता की नहीं पूर्ण कर कि तुम हम दोनों दुख से मुक्त हो। मुनीश्वर के वचनों को विचार के हमारी आपदा नाश होगी, हम भी परम पद को प्राप्त होंगे और तुझको भी शांति होगी। हे मेरी बुद्धि, तू ज्यों का त्यों स्मरण कर कि वशिष्ठ जी ने क्या कहा है। प्रथम तो वैराग्य कहा, फिर मोक्ष व्यवहार कहा, फिर उत्पत्ति प्रकरण कहा कि संसार की उत्पत्ति इस क्रम से हुई है, और फिर स्थिति प्रकरण कहा कि ईश्वर से जगत की स्थिति है और नाना प्रकार के दृष्टांतों से उसे निरूपण किया है। निदान जितने प्रकरण कहे हैं वे ज्ञान विज्ञान संयुक्त है। हे बुद्धे, जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा है तैसे तो स्मरण कर और अनेक बार विचार कर। बुद्धि में निश्चय न हो तो वह क्रिया भी निष्फल है। जैसे शरद काल का मेघ बड़ा घन भी दृष्टि आता है परंतु वर्षा से रहित निष्फल होता है, तैसे ही धारणा से रहित विचार किया हुआ निष्फल होता है। जब धारणा कीजिए वह विचार सफल होता है। वाल्मीकि जी बोले कि हे भारद्वाज, जब इस प्रकार बड़े उदार आत्मा राम जी ने चित्त संयुक्त रात्रि व्यतीत की तो कुछ तम संयुक्त तारागण हुए और दिशा भासने लगी। प्रातः काल के नगारे नौबत बजने लगे, तब राम जी ऐसे उठे जैसे कमलों के खाने से कमल उठे और भाइयों के साथ प्रातः काल के संध्या आदि कर्म करके कुछ मनुष्यों से संयुक्त वशिष्ठ जी के आश्रम में आए। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।